ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी सर्वसम्मत रूप में चयन करने का प्रधानमंत्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा ने नेता कार्यकर्ताओं से किया आग्रह। नेकपा एमाले के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी देने का उपाध्यक्ष भीम रावल ने की घोषणा। बैतड़ी में हुए जीप हादसे में हुई चार की मौत। शांति प्रक्रिया के बाकी काम पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक मत होने को लेकर नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड ने स्वयं को बताया विश्वस्त। और यूरोप में कोविड की वापसी के बाद लागू किए जा रहे सख्त नियमों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन। नीदरलैंड में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 7 लोग हुए जख्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने नेता कार्यकर्ताओं से भरसक सहमति में नेतृत्व चयन करने या नहीं तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करने का आग्रह किया। नेपाली कांग्रेस के 14वें महाधिवेशन अंतर्गत आज प्रदेश सभा निर्वाचन के दौरान सुनसरी के दीवानगंज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा ने ऐसा आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में जीत या हार होती ही है, इसलिए इसे स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वीपी कोइराला द्वारा शुरू की गई सुनसरी नदी सिंचाई परियोजना को पूर्णता देने के लिए नेपाल सरकार अगले बजट में रकम आवंटित करेगी। बैतड़ी में बारात लेकर जा रही जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई। बैतड़ी की दशरथ चंद नगरपालिका वार्ड नंबर 2 थलाल गांव में बारात लेकर दशरथ चंद नगरपालिका 6 सेरा की ओर जा रही जीप दशरथ चंद राजमार्ग गोठला पानी झूलाघाट सड़क खंड अंतर्गत दशरथ चंद नगरपालिका 4 कवल वार्ड मोड़ में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जीप सड़क से तकरीबन 500 मीटर नीचे खाई में गिरी थी। घटना के विषय में विस्तृत विवरण आना अभी बाकी है। ये जानकारी हमारे बैतड़ी संवाददाता सीपी लोहिया ने दी। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष डॉ भीम रावल ने पार्टी के 10वें महाधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी देने की घोषणा की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बात का जिक्र करते हुए कि पार्टी में 10 सूत्रीय सहमति और अंतर पार्टी निर्देश 13 का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है, नेता रावल ने कहा, विद्यमान चुनौती का सामना करने के लिए ही मैंने अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारी दी है। नेकपा एमाले के प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यावाली ने कहा कि एमाले के 10वें महाधिवेशन में विधान का संशोधन नहीं होगा। प्रेस चौतारी के घाटी प्रदेश कमेटी द्वारा आज काठमांडू में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में प्रवक्ता ग्यावाली ने कहा कि सिर्फ पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए विधान का संशोधन नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ग्यावाली ने कहा कि अभी भले ही एमाले में 3 धार जैसा देखने को आया है, लेकिन महाधिवेशन के बाद सभी एक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि एमाले का 10वां महाधिवेशन एकता ऊर्जा और संकल्प का महाधिवेशन होगा। संघीय संसद संसदीय सुनवाई समिति की आज की बैठक कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित हो गई। ब्रिटेन भारत और अमेरिका के लिए नेपाली राजदूत पदों के लिए प्रस्तावित आकांक्षियों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त शिकायत और कार्ययोजना वितरण के लिए आज के लिए निर्धारित संसदीय समिति की बैठक कोरम पूरा न होने की वजह से स्थगित हो गई। ये बात समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण ने बताई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि समिति की अगली बैठक इसी मार्गशीर्ष के सत्र गते बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज अधिकतम बंदी प्रत्यक्षीकरण समेत सभी तरह के मामलों पर सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश चुलेंद्र शमशेर जवरा ने आज के लिए स्वयं को बाहर रखकर 10 संयुक्त इजलास और 1 एकल इजलास समेत कुल 11 इजलासों में से 334 मुकदमों की पेशी तय की थी। उनमें से 9 संयुक्त इजलासों और 1 एकल इजलास में सुनवाई हुई थी। आप रेडियो नेपाल से हिन्दी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राज्यपक्ष और तत्कालीन माओवादी के बीच बृहत शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए आज 15 साल पूरे हो चुके हैं। नेपाल सरकार की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और नेकपा माओवादी की ओर से अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के बीच विक्रम संवत 2066 साल मार्गशीर्ष 5 गते आज के ही दिन विस्तृत शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस बीच नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड ने बयान जारी करते हुए कहा है कि शांति समझौते का मुद्दा समग्र राज्य का है, इसलिए अब तक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एकमत रहे हैं और बाकी काम पूरा करने को लेकर भी प्रतिबद्ध और एकमत रहने को लेकर वे विश्वस्त हैं। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी के विषय में 5 दलीय गठबंधन निर्णय लेगी, ऐसा कहा है। आज चितवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अर्थमंत्री शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार गठबंधन की है, इसलिए गठबंधन के निर्णयों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। देश का विकास, प्रगति, संविधान की रक्षा और क्रियान्वयन के लिए मौजूदा सरकार बनाए जाने की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि हरेक निर्णय गठबंधन से ही लिया जाएगा। आज से 12 से लेकर 18 साल से नीचे के बच्चों को कोरोना वायरस विरुद्ध की फाइजर वैक्सीन देना शुरू किया गया है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक फाइजर वैक्सीन का पहला डोज बीते कार्तिक के 28 गते से देने की शुरुआत की गई थी और ये मार्गशीर्ष 4 गते तक दिया जाएगा। इसी तरह वैक्सीन का दूसरा डोज मार्गशीर्ष 27 गते से आगामी पूस 2 गते तक दिया जाएगा। आज देशभर कोरोना के 238 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 370 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक संक्रमण से मुक्त होने वालों की हालिया दर 97.7% है। बहरहाल देशभर सक्रिय संक्रमितों की संख्या 7164 है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा ने कहा कि संघीय और प्रदेश सरकार अंतर्गत के अस्पतालों की स्तरोन्नति कर प्रभावकारी सेवा प्रदान करने का सरकार का लक्ष्य है। समाजवादी प्रेस संगठन मकवानपुर द्वारा आज हेटौड़ा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री खतिवड़ा ने कहा कि सभी नेपाली नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने की ओर सरकार लगी हुई है। प्रदेश नंबर 2 सरकार में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत की सिफारिश पर नेकपा एकीकृत समाजवादी की ओर से 2 मंत्रीगण नियुक्त किए गए हैं। नेकपा एकीकृत समाजवादी की ओर से उद्योग, पर्यटन तथा वन मंत्री के पद पर शत्रुघ्न महतो और कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्री के पद पर प्रमोद कुमार यादव नियुक्त हुए हैं। नवनियुक्त मंत्रियों ने आज ही प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रा के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ली। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि गरीबी से उन्मुक्ति पाने के बाद ही खिलाड़ी और खेल के क्षेत्र में विकास हो पाएगा। नेपाल खेलकूद महासंघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित खेल नीति संबंधी सम्मेलन में अध्यक्ष ओली ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों पर कम निवेश करती है, लेकिन प्रतिफल की अपेक्षा बड़ी होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोप में कोविड की वापसी के बाद लागू किए गए सख्त नियमों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। शांति प्रिय देश नीदरलैंड में प्रदर्शनकारियों ने रॉटरडैम की सड़कों पर आग लगा दी और पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस हिंसा में 7 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें से 2 लोगों को गोली लगी है। बता दें कि कोरोना का एपिक सेंटर बनने के बाद यूरोपियन देश लॉकडाउन, अनिवार्य टीकाकरण जैसे नियम लागू कर रहे हैं। टीका नहीं लेने वाले लोगों पर सख्ती की जा रही है। जर्मनी समेत कई देशों में टीका नहीं लगाने वाले लोगों को हर रोज कोविड टेस्ट करना होगा। कई देशों में टीका नहीं लगाने वाले लोगों की आवाजाही को सीमित किया जा रहा है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने मौजूदा हालात को राष्ट्रीय आपातकाल बताया है, हालांकि उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन से मना कर दिया है। बीते 24 घंटों में जर्मनी में रिकॉर्ड 59,266 व ब्रिटेन में 44,242 केस आए हैं। फलिस्तीनी क्षेत्र के एक व्यक्ति के आज यरूशलम में इजरायली नागरिकों पर हमला करने से एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई है। इस हमले में 4 अन्य इजरायली नागरिक घायल भी हुए हैं। इजरायली पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में फलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि यह हमला एक विवादित धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर हुआ है, जिसे यहूदी समुदाय के बीच टेम्पल माउंट कहा जाता है। पुलिस ने बताया है कि हमला करने वाले 42 वर्षीय शख्स पूर्वी यरूशलम का रहने वाला था। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी सर्वसम्मत रूप में चयन करने का प्रधानमंत्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा ने नेता कार्यकर्ताओं से किया आग्रह। नेकपा एमाले के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी देने का उपाध्यक्ष भीम रावल ने की घोषणा। बैतड़े में हुए जीप हादसे में हुई चार की मौत। शांति प्रक्रिया के बाकी काम पूरा करने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक मत होने को लेकर नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड ने स्वयं को बताया विश्वस्त। और यूरोप में कोविड की वापसी के बाद लागू किए जा रहे सख्त नियमों के विरोध में हो रहे हैं प्रदर्शन। नीदरलैंड में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 7 लोग हुए जख्मी। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।